आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसे लिखा है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। तो आइए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 13 पर चलिए। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आइए हम उन्हें पढ़ लेते हैं और जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन एक्सप्रेशंस का यूज किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में किया गया है। हॉर्निंग आर सी फेयरिंग स्किल्स, ओमनियस साइलेंस, मे डे कॉल्स, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, अ टसल हेड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देती हूँ, जिससे हम इस चैप्टर को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेसिकली ये स्टोरी है चार लोगों की, जो ऑथर हैं उनकी, उनकी बीवी मैरी और उनके दो बच्चे जोनाथन और सुजैन। इनकी ये कहानी है, इन्होंने सोचा कि ये पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाएंगे अपने जहाज में बैठकर, यानी ये सी वॉयज करेंगे, ये जहाज में बैठकर पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाएंगे। और उसे करने के लिए इन्होंने काफी टाइम तक प्रैक्टिस भी की अपनी सी फेयरिंग स्किल्स, यानी समुद्र में कैसे रहते हैं उन कलाओं को भी इन्होंने बहुत हद तक अच्छा बनाया, जिससे वो इस यात्रा पर जा सके। तो इन्होंने जब अपना ट्रैवल शुरू किया, प्लायमाउथ से इन्होंने अपना ट्रैवल शुरू किया, काफी अच्छा वो जा रहा था। और इन्होंने अपने साथ कुछ असिस्टेंट्स भी रखे, दो असिस्टेंट इन्होंने रखे, एक अमेरिकन था और एक स्विस था, जिनके नाम है विजिल और हर्ब। इन्होंने अपने साथ उन्हें भी रखा कि ये हमारे काम आएंगे, क्योंकि उन्हें काफी अंदाजा था कि कैसे समुद्र में रहते हैं और जो साउथ इंडियन ओशन था वो काफी खतरनाक था, तो इसीलिए उन्हें हेल्प की भी जरूरत पड़ सकती थी। अब स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छा होता रहा, क्रिसमस पे उनका बहुत अच्छे से गुजर गया, लेकिन फिर आ गया समुद्री तूफान। समुद्री तूफान में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। समुद्र की लहरें उन्हें उठा पटक रही थी, वो डेक के ऊपर, यानी जो ऊपर का हिस्सा होता है जहाज का, समुद्र की लहरें उन्हें उठाती और वहां पटक देती। सभी को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और उनकी जो जहाज है वेव वॉकर, उसमें भी काफी सारा नुकसान हो चुका था। ये सब चीजें होती ही जा रही थी, मौसम सुधरने का कोई चांस दिख ही नहीं रहा था। दूर दूर तक उन्हें लग रहा था वो बचने भी नहीं वाले। उसी टाइम जोनाथन, जो ऑथर का बेटा है, उसने कहा कि हम मरने से नहीं डरते, अगर हम सभी साथ हैं तो ये चीज दिखाता है कि यूनिटी है उनके अंदर, वननेस की फीलिंग है उनके अंदर और एक दूसरे के लिए ट्रस्ट भी है। उन्हें पता है कि वो हमारे पेरेंट्स हमें बचा लेंगे और सभी जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा करेज के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ उस चीज का सामना करते हैं जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आकर खड़ी हैं। उन्हें दिख रहा है कि आसपास समुद्र बिल्कुल लहरों से भरा हुआ है, समुद्री तूफान आ गया है, काले बादल उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं डरे। उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया और आखिरकार उन्होंने अपनी जान बचा ली। और उसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा करेज दिखाते हुए एक दूसरे का साथ भी दिया। सपोर्ट भी यहाँ पर बहुत बड़ी चीज थी, बच्चों ने भी सपोर्ट किया। सुजैन को चोट लग गई थी, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को ये नहीं कहा कि मुझे चोट लग गई है, दर्द हो रहा है या किसी चीज की उन्हें जरूरत है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पेरेंट्स बिजी हैं अभी उन्हें बचाने के लिए। तो इस तरह की बहादुरी वाली ये कहानी है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी इतनी बहादुरी दिखाई है जिसकी वजह से उनकी जान बच गई है। इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में आपको काफी सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज, ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो सी फेयर से रिलेटेड होंगे, यानी जो समुद्र में यात्रा करते हैं, जहाज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होंगे, या फिर समुद्र में यात्रा करते टाइम जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए होते हैं, वो वर्ड्स हो सकते हैं। तो उन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ के साथ इसमें डेट्स के साथ चीजें मेंशन है, तो आप डेट्स पर भी ध्यान दीजिएगा कि उस टाइम क्या हो रहा था, क्रिसमस से पहले के क्या हाल थे, क्रिसमस के बाद क्या होने लगा था। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से आपको इस चैप्टर को सुनना है, क्योंकि ये एक टाइप का डिटेल्ड अकाउंट है। इसमें बताया गया है कि उस दिन ये सब हुआ, इतना हुआ, इस टाइप से हुआ, ऐसी चोट लगी, ये सब चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हो। तो आपको बड़ा ही ध्यान से सुनना है, और अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो ये बात है जुलाई 1976 की, जब ऑथर, जो कि एक 37 इयर्स का बिजनेसमैन है, वो उसकी बीवी का नाम है मैरी, बेटा जोनाथन जो 6 साल का है, और बेटी सुजैन जो 7 साल की है, वो इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से चल पड़े थे एक सी वॉयज के लिए, यानी एक समुद्री यात्रा के लिए। और इनका मिशन था कि पूरे वर्ल्ड का इन्हें चक्कर लगाकर आना है, ऐसा 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। काफी टाइम से ऑथर और उनकी बीवी इस बारे में सोच रहे थे कि उन्हें ये सब करना है, तो इसीलिए जब भी उन्हें टाइम मिलता था थोड़ा सा भी फ्री, वो हमेशा ब्रिटिश वाटर्स में, यानी ब्रिटिश समुद्र में जाया करते थे, और अपनी ये जो समुद्री यात्रा के दौरान जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिन जिन एक्टिविटीज को करने की जरूरत पड़ती है, उन सभी स्किल्स को ये ठीक कर रहे थे, उन्हें शार्पन कर रहे थे कि उन्हें हर चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए एक समुद्री यात्रा के टाइम पर। आर बोट वे वॉकर आर 23 मीटर 30 टन वुडन हल ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। उनकी बोट का नाम था वेव वॉकर, 23 मीटर लंबाई थी उसकी और 30 टन उसका वजन था, और वो बहुत ही सुंदर थी और उसे प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया था। और जो ऑथर और उनकी बीवी है, जहां भी उन्हें ऐसा लगता था ना कि अब मौसम बहुत ज्यादा खराब है और इसमें इस बोट को टेस्ट करना चाहिए कि क्या ये काम कर रही है ठीक से, या फिर इसका कोई चीज खराब तो नहीं हो जाती मौसम खराब होते हुई, तो ये लेकर जाया करते थे अपनी बोट को उस एरिया में और टेस्ट किया करते थे। और हर बार वेव वॉकर अपने जो इसकी प्रोफेशनल बेल्ट है, वो इन सब चीजों को अच्छे से टैकल करती रही, यानी वेव वॉकर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sichler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. तो जो पहला फेज था इनकी यात्रा का, वो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से गुजरा। इन्होंने 1,05,000 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया था और बहुत ही अच्छे से ये गुजरा। ये आ गए थे अफ्रीका के साउदर्न पार्ट केप टाउन में। यहाँ पर इन्होंने आगे बढ़ने से पहले 2 क्रूमैन, यानी 2 असिस्टेंट्स को भी अपनी बोट में बिठा लिया। एक तो अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी विजिल, और दूसरा स्विस था, स्विट्जरलैंड से था, जिसका नाम था हर्ब सेचलर। इन दोनों को इन्होंने इसलिए अपने पास
रख लिया था या फिर अपने साथ ले लिया था, क्योंकि अब इन्हें जाना था ईस्ट की तरफ। ईस्ट यानी पूर्व की तरफ, और पूर्व में आता है सदर्न इंडियन ओशन। इंडियन ओशन या हिंद महासागर जिसे हम कहते हैं वो आता है, और ये वर्ल्ड का एक रफेस्ट सी है, रफेस्ट ओशन है। यानी यहाँ पर तो ना कभी भी तूफान आ सकता है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक एरिया है। तो इन्होंने सोचा कि दो असिस्टेंट्स और हो जाएंगे, इससे हमारे लिए हेल्प ही दो होगी, आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए इन्होंने दो असिस्टेंट्स लैरी विजिल और हर्ब सीजलर को अपने साथ रख लिया। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 14 पर चलते हैं। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not bother me, but the size of waves was alarming. Up to 15 meters, as high as our main mast. जब केप टाउन से निकले वो, तो उसके दूसरे ही दिन उनका सामना बड़ी जोरदार हवाओं से हुआ। बहुत जबरदस्त हवाएं चल रही थी। कुछ हफ्तों तक वो लगातार हवाएं चलती रही। वैसे जो वो इतनी ज्यादा स्पीड में, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं थी, उनसे ऑथर को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो लहरें थी उनके साइज से उन्हें दिक्कत थी। 15-15 मीटर ऊंची लहरें समुद्र में चल रही थी, और वो इतनी लंबी थी जितना उनका मेन मास्ट है। मेन मास्ट स्टूडेंट्स, आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, आपने कभी एक जहाज की अगर पिक्चर देखी हो या फिर आपने असल में देखा हो, तो बीचों बीच एक लंबा सा डंडा होता है जिसके साथ एक कपड़ा बंधा हुआ होता है। तो वो जो मेन मास्ट था ना, उससे भी लंबी लहरें जा रही थी, इतनी ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में थी। December 25 found us 3,005 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon. And it did change. For the worse. अब 25 दिसंबर आ गई है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस। केप टाउन से पूर्व की तरफ आकर उन्हें 3,500 किलोमीटर हो गए हैं जब 25 दिसंबर का समय आया है। मौसम ज्यादा ठीक था नहीं, बल्कि मौसम तो खराब ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी ज्यादा कोई टेंशन थी नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छे हॉलीडे मनाया था, और साथ में क्रिसमस वाले दिन उनके पास क्रिसमस ट्री भी था। अब और 15 दिन निकल गए हैं, न्यू ईयर आ गया है। 10 दिन 12 दिन ऐसे निकल गए हैं और न्यू ईयर आ गया है। न्यू ईयर को भी मौसम उतना ही खराब था जितना पहले था, लेकिन इन सभी ने सोचा, अरे कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में मौसम ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन की ही बात है और मौसम बदल जाएगा। मौसम बदला तो सही, लेकिन अब वो और ज्यादा खराब हो गया था। अच्छा नहीं हुआ, ठीक मौसम नहीं हुआ, बल्कि समुद्र में अब और ज्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। एट डॉन ऑन January 2, द वेव्स वर जाइजेंटिक। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. And the screaming of the wind and spray was painful to ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attach lifelines, don't oil skins and life jackets and waited. अब 2 जनवरी सुबह सुबह लहरें और भी ज्यादा उफनती हुई उनके तरफ आ रही थी। वो एक छोटे से स्टॉर्म जिब यानी एक ऐसा इक्विपमेंट जो तूफान आने पे काम में आता है उसके सहारे ही आगे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन लहरें ऊंची ऊंची होती जा रही थी। जैसे ही किसी भी लहर की टॉप पर इनकी शिप आती और ये ऊंचा उठते तो इन्हें दिखता कि एंडलेस समुद्र जिसका कोई अंत नहीं है, इतना बड़ा समुद्र उनकी तरफ दौड़ा आ रहा है, यानी इतनी सारी लहरें उनकी तरफ आ रही हैं। हवाएं इतनी तेज चल रही थी, लहरें भी इतनी तेज थी और उनकी आवाजें कानों में दर्द कर देने वाली थी। बोट को उन्होंने स्लो करने की कोशिश की और फिर अपने जो लाइफ सेविंग किट है उसे भी इन्होंने तैयार करने की शुरुआत कर दी। लाइफ राफ्ट इन्होंने तैयार कर दी, इन्होंने एक ड्रिल भी कर लिया, इन्होंने ये भी देख लिया कि इसे हम ऐसे यूज करने वाले हैं, लाइफ जैकेट इन्होंने तैयार कर ली और उसके बाद उन्होंने किया वेट। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमनियस साइलेंस। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। विद हॉरर आई रियलाइज्ड that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with the frightful breaking crest. So students, ab mausam to kharab tha hi, lekin jo sabse badi problem, sabse badi jise hum kehte hai na trasdi aa gayi, wo aayi thi sham ko 6 baje. शाम को 6 बजे आसपास हो गई पूरी शांति, और आपने तो सुना है तूफान आने से पहले शांति होती है। आसपास जैसे ही शांति हुई, हवाओं ने चलना बंद कर दिया, सब कुछ शांत हो गया और आसमान पड़ गया एकदम काला, और फिर आया एक बहुत बड़ा काला सा बादल। लेकिन जब ऑथर ने ध्यान से देखा तो असल में बादल नहीं था, वो एक लहर थी, एक ऐसी लहर जिसकी हाइट दूसरी लहरों से दुगनी थी। उसे देखकर ये सभी घबरा गए और उसमें से आवाज भी कड़कते धड़कते पानी की इतनी तेज आवाज आ रही थी, अकेले समुद्र में ये लोग फंसे थे उस तूफान में। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I expected my approaching death and I was losing consciousness. I felt quite peaceful. अब जो पानी की आवाज थी वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। थंडर की आवाज आ रही थी, यानी ऐसे कड़कती धड़कती आवाजें आ रही थी। और उसके बाद ऑथर को तो ये लगा कि हम ना इस लहर के ऊपर आ जाएंगे और फिर हम उससे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो लहर थी ही इतनी बड़ी। जैसे ही वो लहर आई वो सीधा उनकी शिप से टकराई। शिप से टकराते ही बहुत तेज की आवाज आई, ऐसा लगा कोई बॉम्ब फट गया हो, और जो ऑथर था जो उसके स्टेयरिंग को संभाल रहा था उसका सिर सीधा उसी में जाकर लगा और उसके बाद पानी में वो डूब गया और उसे उठाकर दूसरी साइड लहर ने पटक दिया, जिसकी वजह से उसके सिर में भी चोट लग गई। और ये लगने की वजह से बोट में तो नुकसान हुआ ही, ऑथर को लगा कि अब वो मरने वाला है क्योंकि धीरे धीरे वो बेहोश हो रहा था, वो अपना होश खो रहा था और उसे बहुत ज्यादा शांति फील हो रही थी कि अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा। वो हलचल भी नहीं कर पा रहा था और वो पानी में भी डूबा हुआ था। Unexpectedly, my head popped out of water. A few meters away, wave walker was near capsizing her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright, my lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled up with blood and broken teeth. Somehow, I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on.
लेकिन ऑथर को जो ये लग रहा था कि वो मरने वाला है और उसने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया था कि चलो अब उसकी मौत करीब आ गई है और वो मरने ही वाला है, ऐसे मौके में अचानक से उसका सिर पानी से बाहर आ गया अपने आप और थोड़ी मीटर के दूर उसे वेव वॉकर दिखाई दे रही थी कि वेव वॉकर बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है लेकिन फिर लहर के साथ वो सीधी हो गई थी। रेलिंग्स को पकड़ते हुए जा रहा था ऑथर कि चलो चलो फटाफट से मेन बूम में जाता हूँ, वहां जाके मैं व्हील को संभालता हूँ। वहां जाकर वो गया पानी के साथ, वो इधर से उधर से ऐसे डोलता डालता जा रहा था और रास्ते में उसके लेफ्ट साइड की रिब्स वो भी क्रैक हो गई, यानी हड्डियां उसकी क्रैक हो गई। उसके मुंह में खून और टूटे हुए दांत थे, उससे उसका मुंह भर चुका था, बहुत ज्यादा चोट उसे लग चुकी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वो जाता है सीधा व्हील के पास और व्हील को टाइट से पकड़ के खड़ा हो जाता है और अगली वेव से, अगली लहर से मुकाबला करने के लिए वो वहां पर खड़ा हो जाता है। वॉटर वॉटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वॉटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। Suddenly, चलिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 15 पर आइए। The front hatch was thrown open and Mary appeared.
We are sinking, she screamed. The decks are smashed, we are full of water.
फिर ऑथर कहते हैं कि हर जगह बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ऑथर ये महसूस कर सकते थे कि शिप में, जहाज में नीचे की तरफ पानी भरना शुरू हो गया है, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि वो व्हील को छोड़कर जाए वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वहां पर देखने के लिए, क्योंकि अगर व्हील को छोड़ दिया तो पक्का ये सब लोग मर जाएंगे। व्हील को भी तो कंट्रोल में रखना था, इसलिए वो वहां से हटे नहीं, लेकिन सामने से उनकी बीवी मैरी नजर आई जो कह रही थी हम डूब रहे हैं, नीचे पानी ही भर चुका है, सारे बोट में पानी ही पानी है और डेक टूट चुका है।
टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच।
फिर ये सुनकर ऑथर ने कहा लो तुम इस व्हील को संभालो और ऑथर नीचे जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ चला। व्हील स्टूडेंट्स जहाज में जो स्टेयरिंग होता है, जो कार्स में, बस वगैरह में या किसी भी चीज में आपने देखा होगा व्हीकल में स्टेयरिंग होता है, तो ऐसे ही जहाज में होता है व्हील। यानी उन्हें कह दिया अपनी बीवी को कि ये स्टेयरिंग एक बार, ये व्हील तुम संभाल लो और मैं देखकर आता हूँ नीचे क्या हो रहा है।
लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ड इनवर्ड्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टेंस एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वॉटर।
स्टूडेंट्स लैरी और हर्ब बिल्कुल पागलों की तरह पानी बाहर की तरफ निकालने में लगे हुए थे। जहाज के लगभग सभी किनारों पर टूटी हुई लकड़ियां झूल रही थी और जहाज के आगे वाला हिस्सा बिल्कुल अंदर की तरफ घुस गया था। कपड़े, क्रॉकरी, डिब्बे और खिलौने सभी जहाज पर आ गए थे और पानी में तैर रहे थे।
आई हाफ स्वाम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड स्यू, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आई। I had no time to worry about bump heads.
फिर जो ऑथर हैं वो आधे तैरते हुए आधे रेंगते हुए बच्चों के कमरे तक पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बच्चों से पूछा तुम लोग तो ठीक हो ना? बच्चों ने कहा हाँ। स्यू अपने सिर के ऊपर उभर आए थोड़े से हिस्से को दिखाती हुई, उसका सिर वहां से स्वेल कर गया था, सूज गया था, उस तरफ इशारा करती हुई बोली मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। लेकिन ऑथर के पास सिर की चोट को देखने का समय अभी नहीं था क्योंकि उनके सामने और बड़ी दिक्कत थी।
उन्हें लग रहा था ये सिर की चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर डूब गए तो कोई भी नहीं बचेगा।
After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on the deck. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, they would surely sink.
फिर ऑथर ने एक हथौड़ा, एक पेच और कैनवस ढूंढ ही लिया और फिर वो उसे डेक पर आकर दोबारा से उन्होंने स्ट्रगल करते हुए उस जगह पहुंचे जहां पर ज्यादा नुकसान हो गया था बोट को। बोट का जो दाया हिस्सा है वो टूटकर खुल जाने की वजह से सभी लहरें जहाज पर आ रही थी, और अगर जहाज के टूटे हुए हिस्से की मरम्मत जल्दी ही ना होती तो 100% था कि वो लोग डूब जाते।
Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side.
किसी तरह से ऑथर ने कैनवस को फैलाकर छेदों को बंद कर दिया। नीचे से अभी भी कुछ पानी आ रहा था, लेकिन ज्यादातर पानी अब दूसरे साइड निकल रहा था, अब शिप के अंदर नहीं आ रहा था।
More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short-circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the four-stay sail, the jib, the dinghies, and the main anchor.
उसके बाद एक और प्रॉब्लम उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। जो पंप थे उनके पास हाथ से चलाने वाले, उनमें मलबे के टुकड़े फंस गए थे जिसकी वजह से वो एक एक करके बंद होने लगे। बिजली वाले पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया था। पानी का लेवल अब इतने भयानक तरीके से बढ़ता जा रहा था। डेक के पर वापस जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उनके पास जो एक्स्ट्रा दो पंप थे और आगे का जो शिप का सामान था, जेब और रक्षा नौकाएं यानी डिंगीज जो होती हैं, वो लाइफ राफ्ट जिसे हम कहते हैं वो होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। एक बड़ा जहाज होता है, आपने पिक्चर्स में देखा होगा, छोटी छोटी बोट्स भी होती है ना साथ में, कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें बैठ के भाग जाए। तो वो और लंगर ये सब मुड़ चुका था, एंकर भी मुड़ चुका था। लंगर का काम होता है शिप को एक जगह पर रोके रखना, वो भी अब मुड़ चुका था।
Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked.
उसके बाद फिर ऑथर को याद आया कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो चार्ट रूम फ्लोर वाले हिस्से में है। उन्होंने उसे एक पाइप के साथ कनेक्ट किया और ये इस बात से थैंकफुल है, शुक्रगुजार है कि ये चीज काम कर गई, और अब जो शिप के अंदर पानी था वो धीरे धीरे बाहर जा रहा था।
द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मेडे कॉल्स, व्हिच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड।
उसके बाद जो रात थी वो बहुत ज्यादा ठंड वाली थी, और इस समय सारी रात वो पंप से पानी बाहर निकालते रहे, जहाज की दिशा को ठीक करते रहे, रेडियो से सिग्नल भेजते रहे, और ये सब काम करते हुए ही उनकी रात गुजर गई। लेकिन उनके सिग्नल्स का कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था।
मेडे कॉल्स होती हैं स्टूडेंट्स, जब भी कोई एरोप्लेन है, कोई हवा में उड़ने वाली चीज है या जहाज वगैरह है, वो सिग्नल से काम करते हैं, वो टाइम टू टाइम सिग्नल देते रहते हैं अपने पास वाले स्टेशन को। तो मेडे कॉल्स होती हैं, मेडे का मतलब कोई प्रॉब्लम उन्हें आ गई है, या तो वो क्रैश करने वाले हैं या समुद्री तूफान में फंस गए हैं, तो वो चिल्लाते हैं मेडे मेडे, या फिर सिग्नल देते हैं मेडे का। मेडे कॉल्स वो उन्होंने सिग्नल्स दिए, यानी उन्होंने बताया कि हम इस तरह से मुसीबत में फंस चुके हैं, लेकिन उनके सिग्नल्स का उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, और वो दुनिया के ऐसे रिमोट कॉर्नर में थे, ऐसे अकेली जगह पर थे जहां पर रिप्लाई ना मिलना स्वाभाविक भी था।
मुश्किल ही था कि यहाँ पर रिप्लाई मिलेगा.
Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all.
अब जो सुजैन थी, जिसका निकनेम यहाँ पर स्यू बोला गया है, उसका जो सिर था वो बहुत बुरी तरह से स्वेल कर गया था, सूज गया था. उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ गई थी और उसने अपने हाथ में एक बहुत ही गहरा घाव भी दिखाया. जब ऑथर ने उससे कहा कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो स्यू ने रिप्लाई किया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप कोशिश कर रहे थे हम सभी की जान बचाने के लिए. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये छोटी बच्ची 7 साल की स्यू भी कितनी करेजियस थी, सुजैन भी कितनी करेजियस थी. उसने अपने इतने बड़े घाव को छिपा कर रखा, उसके सिर में भी चोट लगी हुई थी, लेकिन उसके लिए भी उसने कोई शिकायत नहीं की. बस एक बार उसने कहा था कि मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और वो स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो गई थी और उसके हाथ पे जो चोट लगी थी वो भी बहुत ज्यादा बड़ी थी.
By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boats, चलिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 16 पर आइए, मेन रिप फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द की. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition.
तो स्टूडेंट्स, अब 3 जनवरी की सुबह तक पंप्स की मदद से पानी इतना काबू में आ गया था कि वो बारी बारी करके दो दो घंटे का आराम कर सकते थे, लेकिन समुद्र तल के नीचे वाले हिस्से पर जो उनकी बोट थी उसमें से कहीं से अभी भी पानी आ रहा था. जब उन्होंने उसे चेक किया तो पाया कि समुद्र के तल वाले लगभग सारे फट्टे टूट चुके थे और उनकी बोट के दाएं तरफ से आने वाले पानी को रोकने के लिए बस कुछ अलमारियां ही थी, उसके अलावा कुछ नहीं था, सारे फट्टे अब टूट चुके थे.
वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few 100 kilometers to the east. One of them, Île Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action.
The students, अब ज़्यादा जो time हो गया था wave को hit किए हुए, लगभग 15 घंटे बीत चुके थे और उसके बाद भी ये लोग अपने आप को किसी तरह से जिंदा रखे हुए थे. अब इतने ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी, बोट भी जगह जगह से टूट गई थी, तो अब इन्हें पता था कि वेव वॉकर अब ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं ले जा सकती है. फिर ऑथर ने उठाया चार्ट, उसने चेक किया और कुछ हिसाब किताब लगाने के बाद ये अंदाजा लगाया कि यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर है 2 छोटे छोटे टापू. इनमें से एक टापू का नाम एल एम्स्टरडैम था, जो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था. इस बड़े से समुद्र में अब वो 2 छोटे छोटे टापू ही इन लोगों की आखिरी आशा थी, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वो सेल नहीं चढ़ा सकते थे और इस वजह से इनके बचने की जो आप कह सकते हैं संभावना है वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी कि ये उन टापू तक पहुंच पाएंगे. ऊंची ऊंची उड़ती हुई भयानक लहरों ने
जो उनके पास एक्स्ट्रा इंजन था, सेकेंडरी इंजन था, उसमें भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कर दी थी कि अब वो वर्क नहीं कर रहा था, अब वो नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उनके सामने ये प्रॉब्लम थी कि वो एक ही इंजन पर अब उन्हें काम करना है और उस टापू तक किसी न किसी तरह पहुंचना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ते हैं। आगे की स्टोरी को हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क है कि यहाँ तक आपको इस स्टोरी को पढ़ना है, आपको एक एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल यानी छोटी से छोटी डिटेल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में से काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। डेट के हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि उस दिन क्या हुआ, तो आपको डेट्स को भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। और स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया जब पहली बार इन पर ऊंची सी लहर ने अटैक कर दिया था, जो ऊंची लहर इनके बोट से टकराई थी, उसके बाद इन सभी ने क्या क्या स्ट्रगल किया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।